सूरत मोमिनून में तो ईमान की बातें थी, अगली सूरत में सूरत नूर रोशनियों की बातें हैं। 64 आयात है। किसी मुआशरे में रोशनी कैसे आती है? एक मुस्लिम मुआशरा अफराद से शुरू करके पूरी कम्युनिटी में कैसे प्रमोट किया जाए चीज़ों को कि वहाँ रोशनियाँ ही हों। और आप हैरान होंगे कि 18th पारे में पहले ईमान की बात आई, अब नूर की, और आगे चंद आयात सूरह फुरकान की भी आएंगी। क्राइटेरियन, यानी बिल्कुल कुरान के टॉप पे ले जाकर आपको मुझे ज़िंदगी गुजारने के खूबसूरत तरीके बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहली आयत, जलाल और पुरजोर आगाज़। सूरत अनज़लनाहा व फ़रदनाहा व अनज़लना फ़ीहा आयातिम बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। ये वो सूरत है जिसको हमने नाजिल किया और हमने इसको फ़र्ज़ किया और हमने इसमें रोशन आयतें उतार दी ताकि तुम नसीहत पकड़ो। पूरे कुरान में कोई एक सूरत भी ऐसे अंदाज से शुरू नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि इसके अंदर जितने अहकाम हैं तुम उसको सीरियस लेना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको लोग सीरियस नहीं लेते। कुरान पढ़ते हुए जब तक आप इसको अल्लाह का कलाम नहीं समझेंगे, अल्लाह की चीज़ नहीं समझेंगे, तब तक आप कभी भी इस पे गौर व फिक्र नहीं कर सकेंगे। कितनी ही चीज़ें ऐसी होती हैं कि अल्लाह ताला आपको मुझे सिखाने के लिए रखते हैं ताकि हम गौर करें। ख़ास तौर पे आप देखिए कि सूरत नूर के अंदर कुछ ऐसे अहकाम हैं जो आम लोगों पे बोझल पड़ते हैं। इसके बाद आयत 2 से 3 में शरीयत इस्लामी में हद जिना क्या है, इसका तस्करा है। दूसरा, इसका नाम लिख लीजिए, नस्ब की अहमियत। अल्लाह ताला चाहते हैं कि दुनिया में आए हुए हर बच्चे को पता हो कि वो किसका बच्चा है। इसको हिफाजत नस्ब कहते हैं, इसलिए अल्लाह ने जिना की इतनी सख्त सज़ा रखी है। अज़ानियत वज़ानी फजलिदु कुल वाहिद मिनहुमा मियत जल्दा। क्या पता चला कि जानी मर्द हो या औरत, सज़ा क्या है? 100 कोड़े। इस हद का जारी होना 40 दिन की बारिश से बेहतर है। बस लोग इस्लामी सज़ाओं को बड़ी अनह्यूमन कहते हैं और ये तो बड़ी सख्त हैं जी, बर्बेरिक हैं, दिस एंड दैट। हालांकि आप देखिए कि अगर सज़ा का ये खौफ होगा तो कोई ऐसा काम करेगा? और इस्लामी माशरे को देख लें तारीख में, जिसको आप कहते हैं ना कि आटे में नमक के बराबर भी ये काम नहीं थे, क्योंकि सज़ा का डर था। और ये सज़ा ऐसी एक दिन में नहीं फिट होती। इसको आप सुनिए, इसको पढ़ें, देखें, तो आपको एक पूरा सिस्टम इसमें दिखेगा कि ओपनली, यानी जिसको आप कहते हैं पब्लिकली, जब ये गुनाह होने लगेगा और 4 गवाहों की मौजूदगी में ये सज़ाएं होंगी, तो आज पूरी दुनिया में जो प्लैग है जिना का है। आज के दौर का सबसे बड़ा फितना जो नफ्स की सारी इश्तहाओं के बाद है वो ये है। और अब दिन ब दिन इसी की बिगड़ती हुई शक्लें आपको मिल रही हैं। पहले शादी के बग़ैर ताल्लुकात थे, फिर उसके बाद मर्द के मर्द से, फिर औरत के मर्द से, और अब जो है उसका तो तस्करा भी करना, ऐसे लगता है कि वक्त का ज़िया है। तो लिहाजा अल्लाह ताला ऐसी सज़ाओं को एक किस्म का थ्रेट बनाकर पेश करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा कराम के दौर से लेके इस्लाम के उरूज के वो 1000 साल तक ऐसी चीज़ों से दुनिया पाक रही। जब से हमने अपने हिस्से का काम छोड़ा, आप देख रहे हैं कि दुनिया में खराबियां आने लगी। फिर आयत 4 से 5 में शरीयत इस्लामी में हद कज़फ़ क्या है? कज़फ़ कहते हैं तोहमत लगाने को। इसका तस्करा है कि वो लोग जो भोली भाली औरतों पे तोहमत लगाते हैं, फिर तौबा नहीं करते, तो उनकी सज़ा क्या है? 80 कोड़े। पाक दामन औरत पर जिना की तोहमत लगाने वाले की सज़ा 80 कोड़े हैं। अच्छा, कोई शौहर बीवी के साथ ऐसी कोई बात मंसूब कर दे, इसको लियान कहते हैं। तो इस पे आयत 6 से 10 में मर्द और औरत का एक दूसरे पे जिना का इल्ज़ाम लगाना। अब देखिए ये सारी फॉर्म्स चल रही हैं ना। पहले बात बिल्कुल बाहर के आम लोगों की थी, फिर उसके बाद बात अब घर में आने लगी। और लियान क्या है? ये कह लीजिए कि तलाक की एक वर्स्ट किस्म है। बीवी के जिना में मुलव्वस होने की सूरत में शौहर और बीवी कसम खाकर झूठे या सच्चे होने का इकरार करें तो दोनों में जुदाई हो जाती है। इसकी भी डिटेल्स पढ़ने की ज़रूरत है। अब देखिए कि हमारे पास इतना कुछ है सीखने को। अगर हम एक दफ़ा फातिहा से नाज तक तफसीर कोर्स शुरू कर दें, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमारे नूरुल कुरान प्लेटफॉर्म से सबीलुल जन्ना के नाम पर कोर्स ऑफर होते हैं। इस साल का 2023 अल्हम्दुलिल्लाह रेडी टू रजिस्टर है। मेरी बात सुनने वाले अगर इस बात के बाद nurulquran.com पे जाकर /courses में जाएं, ऊपर ही होगा बैनर, तो आपको सबीलुल जन्ना 2023 की डिटेल्स, हफ्ते में किन दिनों में टाइमिंग है, उसको नोट कीजिए और अपने लिए इस रमज़ान की नेकियों में ये नेकी बनाइए। आप देखेंगे कि अगले रमज़ान से पहले आपके दिल दिमाग में सुकून और ख़ुशी और इत्मीनान भी होगा और बहुत कुछ होगा। फिर इसके बाद एक वाक़या है, पहले तो तोहमत की बात की थी, यहाँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पे लगने वाली तोहमत को बुनियाद बनाकर वाक़या इफ़्क़ और उसकी हिकमतें आयत 11-18 है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पर एक तोहमत लगी थी, क़ुरान ने उनकी बेगुनाही साबित की। क्या पता चला कि ज़िंदगी में कभी कोई इल्ज़ाम लगे तो बहुत दिफा करने की बजाय मामला अल्लाह के हवाले कर दें, वो ज़रूर सच सामने ले आएगा। यह हज़रत आयशा की शान भी है। और किसी के लिए कुरान में इतनी आयात नहीं आई जो इनके लिए आई, तो क्या पता चला कि जब अल्लाह सुभाना ताला आपको पाक दामन रखना चाहे, सारी दुनिया भी आपके बारे में गलत बात कह दे तो आप उस पर परेशान ना हो। फिर इसके बाद आयत 19-20 में मुसलमानों में बेहयाई फैलाने वालों का बुरा अंजाम दिखाया जा रहा है। इन्नल्लज़ीन युहिब्बून अन तशीअ अल-फ़ाहिशा, कुछ लोगों का मिशन है कि मुसलमानों की नस्लें बेहया हों, लिहाजा वो तशी अल-फ़ाहिशा यानी प्रमोट करते हैं, प्रोपिगेट करते हैं बुराई को, फ़ाहिशा को, और ऐसी चीज़ें जिससे गंदे काम हों। दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला ऐसे लोगों को धमकी देते हैं, तो क्या पता चला, फ़ुख़्श अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, ना ज़ुबान से फैलाना, ना लिबास से, ना हरकत से। देखिए, डिसेंसी है इस्लाम में, तहजीब है। आज भी एक महज़ब इंसान को देखकर आपके जहन में क्या आता है? बस समझ लीजिए कि इस्लाम आपको मुझे महज़ब बनाना चाहता है। बेकार कपड़े पहनना, ऐसा लिबास पहनना जिसमें छुपने से ज़्यादा खुलने वाला तस्वर हो, ज़ुबान से गालियाँ देना या कुछ और, ये सब चीज़ें अल्लाह की पसंद से इंसान को दूर कर देती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अल्लाह ताला के फेवरेटीज में शामिल हों, अल्लाह ताला के प्यारे लोगों में हों, तो हमें इंशाल्लाह ऐसी चीज़ों को कट ऑफ करना है। अपने माशरे के तशीअ अल-फ़ाहिशा को देखिए, एडवर्टिज़मेंट के नाम पे है या खुशियों के नाम पे है या कॉन्सर्ट्स और कॉलेजों और स्कूलों के माहौल के नाम पे है। आपने मैंने इंशाल्लाह अपना हिस्सा डालना है इसको ख़त्म करने में। फिर उसके बाद अगर अल्लाह का फजल ना हो तो कोई भी पाकीज़ा नहीं रह सकता। यह आयत 21 का मैसेज है। क्या पता चला कि ला तत्तबी खुतुवाति शैतान, शैतान के नक्शे कदम पे मत चलो, और जो कोई इसके पीछे लग जाएगा तो ये तो उसको बेहयाई और मुनकर की दावत देगा। तो हमेशा अल्लाह से कहा करें कि अल्लाह मुझे उन लोगों में शामिल कर ले जिनको तू पाक करता है, और अपने बच्चों, अपने घर के मर्दों और औरतों की फिक्र होनी चाहिए, उनके लिए भी यही दुआएं किया करें कि अल्लाह ताला उनकी नज़रों को पाक कर दे और सब कुछ। और इसके लिए फिर अमली कोशिशें भी कीजिए। अब जब बच्चों को समझ ना हो और आप उनको ऐसी चीज़ें ले दें, दिलवा दें और फिर उनको अकेले छोड़ दें और वो हर वक्त कंप्यूटर पे बैठे हैं, तो उनको कभी अनअटेंडेड ना छोड़िए। फिर इसके बाद आयत 22 का पैगाम क्या है कि दूसरों की ज़्यादती को माफ़ कर दो, अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। हज़रत आयशा पे जब तोहमत लगी तो बाप होने के नाते हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दिल दुखा। उस पे उन्होंने उस शख्स को कुछ ना देने की कसम खा ली जिसने इसमें हिस्सा लिया, हालांकि हज़रत अबू बकर उसकी टेक केयर करते थे। तो जब उन्होंने कसम खा दी तो अल्लाह ने फौरन कह दिया, वला यातली उलुल फ़ज़ली मिनकुम, आप में फजल वाले, पैसे वाले, दौलत वाले इस बात की कसम ना खाएं कि अपने गरीब रिश्तेदारों जो मिस्कीन और महाजिर भी, उनको कुछ नहीं देंगे। क्या करो, वल्याफ वल्यस्फहु, दरगुजर भी करो, माफ़ भी कर दो। क्या अला तुहिब्बूना, क्या तुम नहीं चाहते, अय्याफिर अल्लाहु लकुम, कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे, क्योंकि अल्लाह तो बख्शने वाला मेहरबान है। अबू बकर सिद्दीक इस आयत को सुनकर क्या कहते हैं कि ना सिर्फ ये है कि मैं उसको दूंगा, मिस्तो नाम था उसका, बल्कि पहले से जो दे रहा था उसी तरह उसको देता रहूँगा, और कहा अल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे गुनाह माफ़ करें, ज़रा अपने ऊपर लीजिए। आपको ये सारी बातें सुनकर क्या लगता है? हम छोटी छोटी बातों पर, उसने मुझे तंग किया, उसने मुझे तकलीफ़ दी, हमारा कारोबार ख़राब कर दिया, हमारा घर बिगाड़ दिया, क्या कोई बाप अपनी बेटी पे तोहमत बर्दाश्त कर सकता है? तो मुकामे सिद्दीकियत पे अगर पहुंचना है तो फिर दुश्मनियां करने वालों को माफ करना होगा। यहां बैठे बैठे बोलिए, मैंने सबको माफ किया जिसने मुझे सताया, मुझे दुख दी, मुझे तकलीफ दी, मेरे बच्चों को, मेरे शौहर को, मुझे, किसी को भी कुछ कहा, मैं उन सबको माफ करती हूँ। आपको ऐसे लगेगा कि आपका 5 किलो वजन कम हो गया, कंधे हल्के होते महसूस होंगे। तो लोगों के ग्रजेस और लोगों की नफरतों का बोझ जब आप कंधों पे लेके फिरते हैं तो आप थकने लगते हैं, आप कमज़ोर होने लगते हैं। फिर उसके बाद आए 23 से 25 में, पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाने वालों का बदतरीन अंजाम बताया जा रहा है कि ऐसे लोगों को क़यामत के दिन बड़ा अजाब भी होगा, अल्लाह की रहमतों से दूरी भी होगी दुनिया और आखरत में, और उनकी अपनी ज़ुबानें, हाथ और उनके कदम उनके खिलाफ गवाहियां देंगे कि इन्होंने ये गलत काम किए थे। ज़रा सोचिए, अभी हमारे हाथ बोलने लगे और हमारे हाथ बोल करके ये वो जो बच्ची है ना, मेड सी रखी हुई, उसको अभी थप्पड़ मार के आई है, और ये देखें इन्होंने गलत नज़र डाली थी अभी थोड़ी देर पहले अपने फ़ोन पे किसी गंदी चीज़ को देखने में, सर से पाँव तक शर्मिंदा हो जाए, पसीनों में डूब जाए। तो क़यामत के दिन क्या होगा, इसको देखने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद आए 26 26, जैसा किरदार वैसी रग़बत, जिसको आप कहते हैं कि एक तरह के लोग इकट्ठे कर दिए जाते हैं, तल खबीसात लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात। क्या पैगाम है इस आयत का कि अल्लाह ने खबीस खबीस के लिए और तैयब तैयब के लिए बनाया, यानी हज़रत आयशा पे तोहमत लगाने वालों ने एक लम्हे के लिए ये नहीं सोचा कि ये बीवी किसकी है, ये बेटी किसकी है, ये खाला किसकी है। तो इतनी पाक दामन औरत पे बात करने वाले असल में ये साबित कर रहे हैं कि उनके अपने अंदर खिबासत भरी हुई है। अब इससे अगली जो सूरत का हिस्सा है ना, यानी शुरू में आप देख रहे हैं कि जिना और उससे मुतल्लिकात थे, अब आयत 27 से ऑनवर्ड किसी मुआशरे को जिना फ्री बनाने के लिए, फहाशी ना हो, बेहयाई ना हो, बड़े खूबसूरत आदाब है जिसमें सबसे पहले किसी के घर में दाखिल होने के लिए हिदायत हैं आयत 27 से 29 में। और यहाँ अगर वो बात कर दी जाए कि किसी के घर जाओ तो अंधे बनकर जाओ और वहाँ से निकलो तो गूंगे बन के निकलो, घर घर में कुछ ना कुछ होता है। देखिए तह के अंदर तो हमेशा गंदगी होती है ना, इवन दूर से चमकती दमकती चीज़ों को भी जब आप अनरैप करते हैं तो अंदर से कुछ नक्स निकल आते हैं। कभी किसी के घर आपको रहना पड़े, आप किसी के साथ रहें, उठे बैठें, कभी उनकी बुराई बाहर जाके ना करें, खामोशी से गुजर जाएं। और यहाँ इन आयात में जो चीज़ें हैं ज़रा सा उसको दोहरा लेते हैं, घर में दाखिल होने के आदाब में सलाम करना, दस्तक देना, इजाज़त लेना, मुनासिब वक्त पर जाना और इत्तला देकर जाना। हम सब अपने लिए जो चीज़ पसंद करते हैं ना, वही दूसरे भी अपने लिए पसंद करते हैं। फिर इसके बाद ना इजाज़त लेंगे तो क्या नुकसान होगा, ऐसे ही उठ के मुंह खोल के। और याद रखिए कि अब तो लॉक हैं, ताले हैं, बेल्स हैं, इंटरकॉम्स हैं, उस दौर में तो घरों के बाहर दरवाजे तक नहीं होते थे, पर्दे थे। अब बद्दू और जाहिल लोग एकदम कमरे में घुस जाते थे, एक एक कमरे के घर होते थे, हुजरे थे छोटे छोटे। तो जो हुक्म कल तक किसी के घर में जाने का था, आज वो किसी के कमरे में जाने का भी है। आगे भी आप पढ़ेंगे कि इवन बच्चे माँ बाप के कमरे में बगैर नौकर के नहीं जा सकते। आप अगर ये चीज़ें अपने घरों में लागू करेंगे, आप देखेंगे कितनी खराबियां बचेंगी। तो अगर कोई बगैर इजाज़त किसी के रूम में चला जाए, आप सोचिए इंसान कभी किसी हालत में भी हो सकता है, क्या आप ये पसंद करेंगे कि आपको उस हालत में कोई देखे? और ये बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह के नबी ने कहा एक शख्स को कि जो किसी के घर के दरवाजे के अंदर एक सुराख में से झांक रहा था, आपने कहा मैं देख लेता तो मैं उसकी आंख फोड़ देता। रहमतुल आलमीन, यानी इंसान का पर्दा कितनी बड़ी चीज़ है। और घर तो सुकून की जगह है, घर में इंसान हर हाल में होता है, कभी अच्छे हुलिये में होता है, कभी बुरे में। नहीं दिल करता कोई हमें आप इस हाल में देखे, तो हमेशा अपने बच्चों को शुरू से लेकर अपने ऊपर भी लेकर इन चीज़ों का आदी कीजिए। नुकसान क्या हैं कि दूसरों का सुकून मुतासर होगा, मेज़बान के वक्त को ज़ाया करेंगे आप, नामुनासिब हुलिये में देखने का सबब बनेगा ये, और मेज़बान नागवारी महसूस करेगा और फिर आपकी अच्छी मेहमान नवाजी नहीं होगी। फिर इसी तरह आप देखिए, हो सकता है वो कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हो, आपके जाने की वजह से मुदाखलत हुई तो आप उसके लिए तकलीफ़ का सबब बने। फिर मेज़बान के वक़ार में कमी का बायस हो सकता है। अगर उसको पहले से बताओ कि आप उनके घर आ रहे हैं, वक्त है, वो साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर अपने आप को एक डिसेंट तरीके से आपके सामने पेश करेगा। आप जब गए हो सकता है किसी ने सर पे मेहंदी लगाई भी है, कोई कपड़े ऐसे पहना हुआ है, किसी के घर में लहसुन प्याज छिल रहा है, कहीं लड़ाई हो सकती है। तो बिन बुलाए मेहमान का मेज़बान बनना मेज़बान पे बोझ बनता है। और इन सब बातों से जो आखिरी नुकसान होगा ना, ताल्लुकात बिगड़ेंगे। कभी कभी बेतकल्लुफी के नाम पे ये काम करते हैं, बाद में लोग फिर बिगड़ जाते हैं। आगे देखिए तो आयत 30 में अब अगला हुक्म है, इन सबको कहते हैं सद्दे ज़राए ज़िना, ज़िना की रोकथाम के तरीके, यानी बेहयाई और फुखश से रुकने की चीज़ें हैं। और वो क्या है कि मर्दों को भी निगाहें झुकाने और शर्मगाहों को छुपाने का हुक्म दिया जा रहा है, और औरतों को भी, क्योंकि निगाह की हिफाजत ईमान की हिफाजत है। मोमिन मर्द औरत एक दूसरे के सामने अपनी निगाहों को नीचा रखें, आंखों को पस्त रखने का हुक्म है, यानी मुतलकन कम्प्लीटली तो नामुमकिन है कि आप ना देखें किसी को। ज़िंदगी में हर वक्त इंसान बाहर जब निकलता है तो नज़र तो पड़ती है, लेकिन कैसी नज़र ना पड़े जिससे फितना हो। तो आंख दिल का दरवाज़ा है, आंख के फितने से बचने की कोशिश करनी है। अचानक नज़र पड़ने पर नज़र फेर ली जाए, नज़रों पर नहीं तो मुआख़ज़ा होगा। आज तो सोशल मीडिया, अब एक हीरो है, इवन कोई उस्ताद है, कोई दर्स दे रहा है, टुकर टुकर मत देखिए। औरत तो चले पर्दे में रहेगी ना, और अगर औरत भी पर्दे में, तो उसको भी नज़रें भर के देखने की ज़रूरत नहीं है। और इधर एक हदीस भी है, सिलसिलतुस्सहीहा की रिवायत 30 है, हज़रत उबादा से ये रिवायत है कि तुम अपनी तरफ से मुझे 6 चीज़ों की ज़मानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। एक किस्म की देखिए इंश्योरेंस है। क्या चीज़ें? बात करो तो सच बोलो, साथ ही साथ मैं भी अपना मुहासबा करूँ और आप भी। जब वादा करो तो पूरा करो, जब तुम्हें अमानत दी जाए तो अदा करो। अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो और अपनी निगाहें नीची रखो और अपने हाथों को रोक कर रखो। कितना मुहज़्ज़ब बना रहा है इस्लाम आपको। और आपने अभी तक नोट किया कि मर्दों को पहले हुक्म दिया गया है। हमारे यहाँ लफ्ज़ पर्दा आते ही जहन में औरतें आ जाती हैं, हालांकि जैसे औरतों को हुक्म है वैसे ही मर्दों को भी है।